इशिका ने अभिमन्यु से तलाक लेने का फैसला कर लिया था और उसके बाद वो राजवंश विला में जाने के बजाय सिंघानिया हाउस लौट आई थी। राधिका ने उसका दिल से वेलकम किया था। इशिका का कमरा तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए वो राधिका के साथ ही सोने वाली थी। पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया। रात के वक्त जब इशिका सोने जा रही थी, तब उसे एक अनजान नंबर से टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ। उस मैसेज में सामने वाले इंसान ने उसे तलाक ना लेने की बात कही थी। इशिका उस मैसेज को देखते हुए अपने मन में बोली, अच्छा तो आखिर वो साजिश करने वाला सामने आ ही गया। जिसने हमारी शादी की साजिश की थी, कौन हो सकता है वो जो चाहता है कि मैं और अभिमन्यु साथ में रहें? इशिका जल्दी से बालकनी में आई और उस नंबर पर कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सामने वाले ने कॉल कट किया और एक मैसेज और भेजते हुए उस शख्स ने कहा, मुझे कॉल मत करो, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मेरा बच्चा अभी सोया है। उसका मैसेज देखकर इशिका हैरान रह गई। वो मन ही मन बोली, अब ये बीच में बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे तो लगा था कि ये साजिश करने वाला इंसान बहुत चालबाज रहा होगा, लेकिन ये बच्चे की बात क्यों कर रहा है? इशिका ने उसके मैसेज के जवाब में पूछा, तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। एक बात याद रखना, कभी अभिमन्यु से अलग मत होना। सिर्फ अभिमन्यु ही है जो तुम्हें आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट कर सकता है, सामने वाले इंसान ने रिप्लाई दिया। उसका मैसेज इशिका को और ज्यादा हैरानी में डाल रहा था। वो धीरे से बोली, लेकिन मुझे किसी तरह का खतरा नहीं है, फिर अभिमन्यु मुझे किससे प्रोटेक्ट करेगा? सिर्फ मालविका ही थी जो मुझे परेशान करती थी, लेकिन उससे तो मैंने बहुत पहले पीछा छुड़ा लिया था और अब तो वो दूर दूर तक मेरी जिंदगी में नहीं है। इशिका को गुस्सा आ रहा था। उसने जवाब में काफी रूखे तरीके से लिखा, मैं ठीक हूँ और मुझे किसी प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी तक तुम सच से अनजान हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। अभी तक तुम अपनी जिंदगी में आने वाले खतरों से अनजान हो। तुम्हें इतना ही समझा सकती हूँ कि अगर तुम अभिमन्यु से अलग हुई तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, इशिका को सामने से जवाब मिला। इशिका ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये मुझे कन्फ्यूज कर रही है। मेरी और अभिमन्यु की शादी इस वजह से हुई थी क्योंकि दादी ऐसा चाहती थी। अब बीच में तीसरा आदमी कहाँ से आ गया? अभिमन्यु मेरे लिए पूरी तरह अनजान था, फिर वो मुझे किसी खतरे से कैसे बचा सकता है? इशिका ने चिढ़ते हुए लिखा, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो? मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, उस अनजान शख्स ने जवाब में कहा। ठीक है, फिर इतना बता दो कि तुम पहले से कैसे जानती हो कि मैं राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ। दादी के पास एक फोटोशॉप की हुई पिक्चर थी जिसके अंदर मैं राधिका सिंघानिया के साथ थी। उन्हें ये बताया गया था कि ये मेरी माँ है। तुम पहले से जानती थी ना इस बारे में? इशिका ने आगे पूछा। तुम इन सब मामलों में नहीं पड़ोगी तब तक ही सुरक्षित रहोगी। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि अभिमन्यु के साथ रहो, चाहे जो भी हो जाए उससे डिवोर्स मत लेना, सामने मौजूद लड़की ने काफी रहस्यमय तरीके से कहा। इशिका के इतना पूछने के बावजूद वो लड़की जवाब नहीं दे रही थी, तो वो गुस्से में बोली, जब तक कि तुम मुझे सब कुछ बताकर मेरी बात नहीं मान लेती, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कल मैं और अभिमन्यु डिवोर्स ले रहे हैं। इशिका के धमकी देने पर उस लड़की पर असर हुआ। उसने झट से पूछा, ठीक है, फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ। इशिका को लगा नहीं था वो लड़की इतनी आसानी से उसकी बातों में आ जाएगी। उसका अगला मैसेज आया, ठीक है फिर कल मिलकर बात करते हैं, उस लड़की ने जवाब में इतना ही कहा। शायद वो मैसेज में इशिका को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। ठीक है फिर मिलकर ही डिसाइड करते हैं, अगर तुम मुझे यकीन नहीं दिला पाई तो मैं कल अभिमन्यु से हर हाल में तलाक ले लूंगी, इशिका ने उसे धमकी देते हुए कहा और फिर अपना फोन बंद कर दिया था। इशिका ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, ये अनजान इंसान जो भी है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। कल का दिन बहुत अजीब रहने वाला है, मुझे हैंडसम अंकल के साथ लंच के लिए जाना है, अभिमन्यु के साथ डिवोर्स के लिए अपॉइंटमेंट है, तो कल ही मेरी शादी का राज खुल जाएगा। ऐसा करती हूँ, इसे मिलने का टाइम मैसेज कर देती हूँ ताकि सब मैनेज हो जाए। इसके बाद इशिका ने तुरंत ही उसे कल सुबह 11 बजे मिलने का मैसेज भेज दिया था, साथ ही उसने लोकेशन भी बता दी थी। इशिका वहां खोई हुई हालत में खड़ी थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर एक शॉल रख दिया। वो राधिका थी। राधिका इशिका के पास आकर खड़ी हो गई। इशिका ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, माँ आप अब तक सोई क्यों नहीं है? थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, आज पहली बार अपनी बेटी के साथ सोने जा रही हूँ, राधिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने इशिका से कहा, क्या सच में तुम अभिमन्यु से तलाक लेने का मन बना चुकी हो? इशिका चुप हो गई थी। वो पूरे दिन से अभिमन्यु के बारे में भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधिका के पूछने पर उसकी आंखों में फिर से अभिमन्यु का चेहरा आ गया। इशिका ने खुद को सख्त किया और कहा, नहीं माँ
मैं उससे अलग नहीं होना चाहती हूँ। राधिका को लगा नहीं था कि इशिका ये जवाब देगी। इशिका को इमोशनल होता देखकर राधिका ने उसे गले लगाया और सहलाते हुए कहा, जानती हूँ कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, प्यार ऐसा ही होता है। तुम चाहो तो रो सकती हो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी। इशिका खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसकी भावनाएं उसके काबू में नहीं रही थी। काफी कंट्रोल करने के बावजूद इशिका के मुंह से एक सिसकी निकली और आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। इशिका ने रोते हुए धीरे से कहा, मुझे खुद से ज्यादा बुरा उसके लिए लग रहा है। अगर मैंने उसे आजाद नहीं किया तो वो अंदर से घुटकर रह जाएगा। अभी उसे लग रहा होगा कि मैं उसके साथ अन्याय कर रही हूँ, पर वो मेरे फैसले को समझेगा माँ। इशिका अपना दिल हल्का कर रही थी। तुम्हें ही सिंघानिया मेंशन से थोड़ी दूर अभिमन्यु की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसकी नजरें सिंघानिया हाउस पर टिकी हुई थी, जहाँ बालकनी में खड़ी इशिका को वो गाड़ी के अंदर से देख रहा था। आज पूरा दिन अभिमन्यु ऑफिस में था और उसने खुद को काम में पूरी तरह डुबा लिया था। पूरा दिन अभिमन्यु ने खाना तक नहीं खाया था और ऑफिस में ही रहा। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी वो घर जाने के बजाय यहाँ आ गया था। कुछ देर में राधिका और इशिका अंदर चली गईं, तो अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, गाड़ी घर लेकर चलो। ड्राइवर ने राहत की सांस ली, उसे लगा अभिमन्यु पूरी रात यहाँ रुकने वाला है। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त उसने शीशे में अभिमन्यु का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बंद थी और वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसे आज अपने बॉस पर दया आने लगी थी। कुछ ही देर में वो राजवंश विला पहुंच चुके थे। जैसे ही अभिमन्यु गाड़ी से उतरा, दिग्विजय का ड्राइवर जल्दी से दौड़कर उसके पास आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन से वो अभिमन्यु का इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने जल्दी से अभिमन्यु को पार्सल देते हुए कहा, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, आपके लिए एक पार्सल आया था जो मुझे आप ही को देना था। ड्राइवर चाहता तो वो पार्सल निवेदिता या वसुधा को दे सकता था, लेकिन दिग्विजय ने खास उसे अभिमन्यु को देने के लिए ही कहा था। इस वजह से वो पूरा दिन इंतजार करता रहा। अभिमन्यु को पार्सल देने के बाद वो तुरंत वहां से सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। अभिमन्यु ने बिना किसी इच्छा के उस पार्सल को लिया और अपने कमरे में जाकर उसे कोने में रख दिया था। कमरे के अंदर आते ही उसने पृथ्वी को मैसेज करते हुए कहा, हमें बहुत सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करनी थी, आधे घंटे में सबका टाइम शेड्यूल करो और मुझे उन सबसे अभी मीटिंग करनी है।
लेकिन सर रात काफी हो गई है, आज आपने बहुत काम किया है, आपको सो जाना चाहिए, पृथ्वी ने हैरानी से जवाब दिया। पर अभिमन्यु उसकी कहाँ सुनने वाला था, उसे तो खुद को इशिका के ख्यालों से दूर रखना था। अभिमन्यु की जिद के आगे पृथ्वी को भी झुकना पड़ा। उसने इंटरनेशनल क्लाइंट को कांटेक्ट किया और उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग अरेंज की। पूरी रात अभिमन्यु काम करने में लगा था। पिछली दो रात से वो सोया नहीं था, इस वजह से वो काफी थका हुआ भी था, लेकिन जैसे उसे खुद को सजा देनी थी। सुबह 6 का अलार्म बजने पर अभिमन्यु ने एक नज़र पार्सल की तरफ देखा और फिर वहां से मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत रहा है। आज मुझे उससे कोर्ट रूम में मिलना है और मैं ज़्यादा टाइम तक उसे रोक नहीं पाऊंगा। काश ये वक्त यहीं पर रुक जाए और तुम मेरे पास वापस आ जाओ इशिका, अभिमन्यु ने मन ही मन कहा। वहीं दूसरी तरफ इशिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आने पर वो परेशान हो गई थी। ऊपर से वो ये भी नहीं चाहता था कि इशिका अभिमन्यु से तलाक ले। इसी उधेड़बुन में खोई हुई इशिका तैयार हुई और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंची। तभी एक हाउस हेल्पर ने उसके पास आकर कहा, मैडम बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। इशिका ने हामी भरी और बाहर जाने लगी। उसने अपने मन में कहा, क्या वो औरत बाहर आई होगी जिसे कल रात को मैंने मैसेज किया था, लेकिन हमारी तो दोपहर में 11 बजे मिलने की बात हुई थी, फिर वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं। इशिका बाहर पहुंची तो बाहर एक 50 साल की दुबली पतली औरत खड़ी थी। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि वो पहली बार उससे मिल रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या यही वो औरत है जिसने कल रात मुझे मैसेज किया था, लेकिन उसने कहा था कि उसका बच्चा सो रहा है। नहीं, ये वो नहीं हो सकती है, वो मुझे कम उम्र की लगती हैं। इशिका उसकी तरफ देखकर सोच रही थी, तभी वो उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मिसेज राजवंश, आप ही मिसेज राजवंश है ना। इशिका ने अपना हाथ उससे अलग किया और कहा, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं प्रणाली की माँ हूँ, उस औरत ने जवाब दिया। जिस तरह से प्रणाली की माँ वहाँ पर आई थी, उससे इशिका समझ गए कि वो उसके लिए नई मुसीबत खड़ी करने के लिए ही आई है। इशिका पहले से ही परेशान थी, पिछली दो रातों से वो भी नहीं सोई थी। इशिका दरवाज़ा बंद करने को हुई, लेकिन उसने इशिका का हाथ पकड़कर कहा, मिसेज राजवंश, मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन मेरे पास आपके साथ बात करने का कोई रीज़न नहीं है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, इशिका ने जवाब दिया। इशिका वहां से जाने को हुई, तभी बाहर से 2-4 रिपोर्टर निकल कर आ गए थे। उनमें से एक ने कहा, मैडम मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, पूरा इंटरनेट आपके और मिस्टर राजवंश के रिश्ते के बारे में जानना चाहता है। जब मिस्टर राजवंश और प्रणाली कपूर पहले से ही रिलेशनशिप में थे तो आप उनके बीच में कैसे आईं? दूसरे रिपोर्टर ने आगे आकर कहा, क्या आप इतनी बहरम है कि आपको प्रणाली कपूर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी वजह से मिस्टर राजवंश उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप ही की वजह से प्रणाली कपूर की मानसिक हालत इस हद तक बिगड़ी है। ऐसे ही एक एक करके रिपोर्टर उससे सवाल पूछने लगे। इशिका को समझते देर नहीं लगी कि प्रणाली की माँ और उन रिपोर्टरों को वहाँ किसने भेजा होगा।
पहले भी नकुल ने वीडियो वायरल किया था तो अब भी ये उन्हीं की हरकत थी। इशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। उसने प्रणाली की माँ की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल सही वक्त पर तमाशा लगाने के लिए आप यहाँ पर आई हैं। प्रणाली कपूर बीमार है, क्या मैंने उसे बीमार किया है? इसकी माँ की वजह से वो बीमार है, क्योंकि बचपन में इसने उसे मारा पीटा था। यहाँ मेरे बजाय इससे सवाल पूछना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में ड्राइवर सुबह नींद से उठा। उसने अपना सिर पकड़कर कहा, अरे बापरे, मैं उन्हें बताना ही भूल गया कि ये वही पार्सल है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं। किसी घमंडी बंदर के नाम से आया है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकला और अभिमन्यु के पास जाने लगा। तभी उसने देखा अभिमन्यु गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। आज वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर वहीं पर खड़े खड़े जोर से चिल्लाया, मिस्टर राजवंश, मिस्टर राजवंश, मेरी बात सुनिए। सीनियर राजवंश सर ने कहा है कि ये पार्सल वही है जिसका आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज उसे खोलकर जरूर देखिएगा। अभिमन्यु ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से चला गया। इस वक्त वो तेजी से सिंघानिया हाउस जा रहा था। उसने भी वो लाइव न्यूज देखी थी। अभिमन्यु ने ड्राइवर के आने का इंतजार नहीं किया था और खुद ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा था। बस बहुत हो गया है, मेरी वजह से इशिका इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, अभिमन्यु ने मन ही मन कहा और गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल तेज कर लिया था। इस वक्त उसे ट्रैफिक सिग्नल्स या बाकी गाड़ियों की भी परवाह नहीं थी। अभिमन्यु की गाड़ी में न्यूज चालू थी। प्रणाली की माँ ने आगे आकर कहा, प्लीज मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए, उसने अभिमन्यु राजवंश की जान बचाई थी। बदले में उसने वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन बीच में आप आ गई। वो बेचारी इस वजह से सदमे में चली गई कि अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। प्लीज मिसेज राजवंश, मेरी बेटी के साथ ये अन्याय मत होने दीजिए, बीच में से हट जाइए। न्यूज के नीचे अलग अलग तरह के नेगेटिव कॉमेंट्स आ रहे थे जो इशिका को ही भला बुरा कह रहे थे। अभिमन्यु इशिका को इन सबसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी इशिका आगे स्टेटमेंट देने के लिए आई और अभिमन्यु ने जैसे ही उसका स्टेटमेंट सुना, उसने गाड़ी को एक झटके में ब्रेक लगाया और वो वहीं पर रुक गया था।